हरे कृष्ण। हम आज के शुभ दिन में कृष्ण जयंती मना रहे हैं और आप सब भक्तों का हम स्वागत कर रहे हैं मंदिर में। तो आज के दिन सारे दुनिया के लोग मनाते हैं उस परम सत्य परम पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अवतरण के सुअवस्था पर। सारे दुनिया के इस्कॉन मंदिरों में इस तरह की बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। तो आज के सत्र में हम लोग गीता से शुरू करेंगे और हम भागवत से कुछ सुनकर हम प्रवचन को विराम देंगे। तो अभी 8:30 बज गया है, मैं सिर्फ 9-10 तक बोलने वाला हूँ, 40 मिनट। तो मेरा विनती है कि कुछ बच्चों को कोई शांत करा दें, इधर के आवाज करने वाले बच्चों को। हरे कृष्णा, बच्चे लोग 40 मिनट के लिए शांति शांति। तो देखिए, भगवद गीता में हम कृष्ण के जन्म के बारे में एक श्लोक सुनते हैं, उसको हम पहले बोलेंगे। सब लोग पीछे दोहराइए, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। गीता में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को समझेगा कि ये दिव्य है, उस व्यक्ति को इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ता, वो मेरे धाम में आ जाता है, ऐसे भगवान बताते हैं। इसलिए हम आज के सत्र में भगवान के दिव्य कर्मों के बारे में, दिव्य जन्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, गीता में हम पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो खड़े थे भगवान श्री कृष्ण, उनके संबंध में। और भागवत के कृष्ण एक नन्हे मुन्ने बालक बनकर यशोदा के भवन में विविध तरह के लीलाएं रचाया उन्होंने। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र में सदुपदेश जो कृष्ण ने ज्योतिषर में अर्जुन को दिया, गीता का उपदेश, उस गीता का उपदेश को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कैसे हम लोग जीव भगवान के ऊपर हम निर्भर हैं। उसके बाद हम भगवान के बचपना की लीलाएं हम बाद में सुन सकते हैं। तो गीता में हमें पढ़ने को मिलता है, पढ़ने को ही नहीं लेकिन भगवान ने दिखा ही दिया अर्जुन को अपने विश्व रूप दर्शन का प्रदर्शन किया भगवान ने कि अर्जुन ये बात जानो कि मेरे ऊपर कुछ सत्य नहीं है, मेरे बराबर कुछ सत्य नहीं है। इस बात को भगवान ने दो तरीके से अर्जुन को समझाया। एक अपने बचपन में, एक समय की बात है कि यशोदा मैया के पास आकर कुछ गोप लड़कों ने शिकायत की कि देखिए मैया, कान्हा ने मिट्टी खाया, आप खुद देख लो। तो यशोदा ने कृष्ण को बुलाया। तो यशोदा पहले बहुत बार सुनी थी कि मेरे कान्हा ने किसी के घर में जाकर माखन की चोरी की, वो तो सुनकर हंसती थी, वो कभी उसको चिंता नहीं होता था, क्योंकि अगर मेरा बेटा थोड़ा ज्यादा मक्खन खा लेगा तो क्या नुकसान होने वाला है, और थोड़ा मोटा बन जाएगा वो, अच्छा ही है। लेकिन अभी वो मिट्टी खा कर आया है, मिट्टी खाने से बच्चे को कुछ व्याधि हो सकता है। इस तरह डर के मारे यशोदा ने अपने बच्चे को बुलाया, बुलाकर उनके मुंह खोलने के लिए बोला। कृष्ण ने तो पहले कुछ बहाना बताया, ना हम बक्षितमानं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे मुखं, ऐसे बोला उन्होंने। मैया, ये सब जोटीबाजी कर रहे हैं मेरे मित्र, कोई इसके बोलने में कुछ सत्य बात नहीं है, मैंने मिट्टी नहीं खाया, आप चिंता मत करो, अगर आपको शंका हो तो मेरे मुख में देख लो खुद ही। तो कृष्ण ने सोचा कि मुख में क्या ढूंढने वाली है माता, छोड़ देगी वो। लेकिन मैया ने उनको बुलाकर गोद में लेकर उनके मुंह खोलकर देखा। मुंह के अंदर क्या देखा मालूम है आपको? क्या देखा उन्होंने? सारे ब्रह्मांड को देखा उन्होंने। अगर आपको कोई पूछते हैं कि कृष्ण को तुम भगवान बोलते हो, इस बात जो भगवान बोलने बोल रहे हो उसकी प्रूफ क्या है, तो यह एक लीला है। ब्रह्मांड घाट में हुआ, वृंदावन में, जिधर कृष्ण ने अपने मुख खोलकर सारे ब्रह्मांड को, चंद्रमा जैसे सूर्य और तारे ग्रह इत्यादि को पूरा अपने मुख के अंदर दिखाया भगवान ने। तो दूसरी बात है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने एक विश्वरूप दर्शन का प्रदर्शन किया, जिसमें करोड़ों चेहरे थे, करोड़ों हाथ थे, पैर थे, चारों दिशाओं में घेर लिया भगवान ने। ऐसे अर्जुन ने देखा कि कहीं भी देखो भगवान की चेहरा दिख रहा है, हजारों लाखों करोड़ों चेहरा है। तो उस विश्वरूप दर्शन में सब लोग थे, 33 कोटि देवता भी थे उसमें, सब जीवराशियां भी थी उसमें, दुनिया में जो भी जिधर भी चल रहा हो सब कुछ था उस विश्वरूप दर्शन में। तो भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन तुम खुद ही देख लो, इस दुनिया में एक तृण भी, एक थोड़ा भी हिल नहीं पाएगा मेरे अनुमति के बिना। तो मैं ही परम सत्य हूं, मेरे बराबर, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को अपने असली स्थिति के बारे में घोषणा भी किया, दिखाया भी। तो भगवान के भक्तों के लिए ये दो लीलाओं को पहले से जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है वो परम सत्य है। लेकिन गीता में और एक बात हमें मिलता है सुनने के लिए, 15वें अध्याय आप पढ़िए, कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, मैं इस दुनिया में रहने वाले जीवों को मैं कितना सपोर्ट करता हूं, तुम खुद ही देख लो। पहले भगवान बताते हैं, गामा विश्वच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्टामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हे अर्जुन, मैं सारे ग्रहों को तैराता हूँ, उनको ग्रहण करके पकड़कर रखता हूँ, क्योंकि हर ग्रह के अंदर मैं अंदर प्रवेश करके उसको उसके स्थान में रखता हूँ। ऐसे भगवान बोलते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट एक स्पुटनिक को भेजता है, सैटेलाइट भेजता है, कंट्रोल रूम में बैठकर उसको कंट्रोल करता है, भगवान भी इस तरह हजारों लाखों ग्रहों को तैराते हैं और अपने ही लोक में बैठकर उसको कंट्रोल करते हैं भगवान है? तो इसके साथ साथ भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, आप सब जीव होते हैं, मेरे बच्चे हो, तो आपको खाने पीने के लिए व्यवस्था मैंने ही किया है। सूर्य के द्वारा मैं वर्षा बरसाता हूँ, और वर्षा जब होता है उससे घास उगता है, गाय घास खाती है तो दूध देती है, तो हम लोग दूध पी पाते हैं, और विभिन्न तरह के तरकारी पैदा होते हैं, उसमें जूस जो तरकारी में होता है वो मेरे चंद्रमा के द्वारा मैं देता हूँ। तो ये एक श्लोक है गीता में, मैं भक्तों को पूछूंगा, जिसमें भगवान बताते हैं कि मैं इस प्रकृति को चलाने वाला मैं ही हूं। कोई जानते हैं श्लोक? हाथ ऊपर करिए, आपको खड़ा करके श्लोक पूछेंगे आपसे। इस प्रकृति को चलाने वाला मैं ही हूं, ऐसे भगवान बताते हैं, गीता में एक श्लोक है। कोई जानते हैं? ये प्रकृति अपने आप चल नहीं सकती है, ऑटोमेटिक नहीं चल सकती है, प्रकृति को चलाने वाला, नेतृत्व करने वाला मैं ही हूं, भगवान बताते हैं। कौन जानते हैं? हाँ माता जी बोलिए, आप उनको माइक दीजिए, उनको। यू हैव अ कार्डलेस माइक, गिव गिव इट हर। ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो प्रभुपाद जी अक्सर बोलते हैं श्लोक।
दैवी हिंसा गुणमय महामाया दुरत्यय।
वो तो माया के बारे में जरूर बोलते हैं भगवान, लेकिन एक श्लोक में बोलते हैं भगवान की ये प्रकृति मेरे नेतृत्व में चलती है, अपने आप नहीं चलती है, ऑटोमेटिक। कोई जानते हैं? आपने जो श्लोक बोला सही श्लोक है, लेकिन ये जो मतलब मैं बोल रहा हूँ अनुवाद, इसका और अलग श्लोक है। कोई जानते हैं? ठीक है, सब लोग दोहराइए।
मया अध्यक्षेन प्रकृति।
हाँ कौन बोला? ना ठीक है, हरि बोल बोल लीजिए, हरि बोल। मया अधि अक्षेण प्रकृति। देखिए, अधि का मतलब ऊपर से, अक्ष का मतलब आंखें, अगर किसी का आंख ऊपर से हो नीचे देख रहा हो उसको सुपर विजन बोलते हैं उसको. विजन का मतलब है अक्ष, सुपर का मतलब है अधि, अध्यक्ष का मतलब क्या है, ऊपर से देखने वाला, सुपरवाइज करने वाला. भगवान बोलते हैं कि मैं सुपरवाइज करके प्रकृति को चला रखा हूं. कैसे? चंद्रमा और सूर्य जो होता है वो भगवान के दो आंखें हैं, विष्णु सहस्र नाम में बोला गया है, चंद्र सूर्य नेत्र ऐसे. उन दो आंखों से भगवान प्रकृति की ओर दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति में बारिश पैदा करते हैं, धान्यों को उगाते हैं, फल फूल तरकारी इत्यादि को उगाते हैं और चंद्रमा के द्वारा जूस प्रदान करते हैं उनको. इस तरह भगवान के दो आंख हैं जिसके द्वारा सब जीवराशियों को खाने पीने की व्यवस्था भगवान करते हैं. तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को, आप बोल रहे हो कि ये दो चंद्र और सूर्य भगवान के आंखें हैं, लेकिन भगवान के चेहरा किधर है? ऐसे पूछा उन्होंने. प्रभुपाद जी बोले, देखो रात को अंधेरे में एक बिल्ली को देखो क्या दिखता है आपको? देखा आपने कभी रात को अंधेरे में बिल्ली को देखते हो तो क्या दिखाई देता आपको? किसी ने देखा कभी? सिर्फ आपको दो आंखें दिखाई देंगे, बाकी सब काला काला दिखेगा आपको, है ना. इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि भौतिक दुनिया भी काला काला है क्योंकि अज्ञानता रूपी अंधकार है, इसलिए तुमको सिर्फ भगवान की आंखें दिखाई देते रहे इधर चंद्र और सूर्य. तुम गोलोक में जाओ पूरा भगवान के सुंदर स्वरूप देखने को मिलेगा, ऐसे बोला उन्होंने. तो इस तरह अपने आंखों के द्वारा भगवान अपने बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं. आगे भगवान बताते हैं, तुम खाते हो जब भोजन, उसको पचने का शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, उसका पाचन करने वाला भी मैं ही हूं, क्योंकि एक वैश्वानर नाम का एक अग्नि है. देखिए हमारे शरीर में अनेक अग्नि है. एक तरह का अग्नि है जो जठराग्नि हम बोलते हैं, जो भूख को पैदा करता है. तो जठराग्नि जब प्रबल होता है हम लोग भागते हैं खाने के लिए, खाने के बाद तो पाचन के लिए और एक अग्नि लगता है, वैश्वानर अग्नि है. तो भगवान बोलते हैं वो अग्नि मैं पैदा करता हूं पेट के अंदर, सबके पेट के अंदर. इसलिए अगर पाचन नहीं हुआ तो लोगों को पेट में दर्द होता है, गैस पैदा हो जाता है ना. अनेक लोग दवाई खाते हैं, हरडे चूर्णम बाकी वगैरह खाते हैं. तो भगवान बोल रहे हैं कि पाचन करने, भोजन देने वाला भी मैं हूं, पाचन करने वाला भी मैं हूं, भगवान बताते हैं इसे गीता में. और भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये बात समझो कि ये प्रकृति को सृष्टि मैंने किया, मैं चला भी रहा हूं और सबको खिला भी रहा हूं, पाचन भी कर रहा हूं, सबके हृदय में बैठकर उनको मार्गदर्शन भी मैं देता हूं. जैसे आप लोग भगवद गीता के कवर देखिए, उसमें से बहुत कुछ सीखने लायक चीज है. अर्जुन बैठा है रथ में, भगवान चला रहे हैं भगवत, ये रथ को चला रहे हैं भगवान. मतलब क्या है? अर्जुन ने अपने जीवन के रस्सियों को भगवान के हाथ में सौंपा दिया. ये पहला लेसन है कि हम लोग भी अपने जीवन के रस्सी को भगवान के हाथ में सौंपाएंगे तो भगवान आगे जाएंगे, मार्गदर्शन देंगे, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे तो हमें कल्याण प्राप्त होगा जीवन में, कल्याणमय जीवन होगा हमें. इसलिए बनिया लोग भी लिखते हैं शुभ लाभ, स्वस्तिक का सिंबल डालकर शुभ लाभ लिखते हैं ना, क्योंकि लाभ के पहले शुभ आना चाहिए, क्योंकि शुभ का मतलब है भगवान, लाभ का मतलब है प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट के पहले भगवान को मत डालो तो प्रॉफिट सब खत्म हो जाएगा, इसलिए लिखते हैं. तो अर्जुन ने भी भगवान को सामने किया, खुद पीछे रहा. दूसरा चीज हम सीखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम का आधीन बनकर वो दास बनते हैं भक्तों के, उस तस्वीर से हम जानते हैं. इस तरह जिस स्थान में भक्त लोग आकर भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं, तीव्र भक्ति करते हैं, उधर भगवान आ जाते हैं उधर, और उन भक्तों की सेवा खुद भगवान करते हैं. पांडवों की सेवा उन्होंने की, पांडवों के पास भगवान का इतना प्रेम था कि उनके महल में आकर रहते थे. ऋषि मुनि जंगल से पांडवों के महल में आकर भगवान को मिलने के लिए आते थे. ऐसे जंगल भी छोड़कर शहर में आकर उन्होंने पांडवों के महल में आ गए ऐसे. तो इस तरह भगवान चला रहे हैं अपने ही भक्त का रथ को चला रहे हैं, उसको देखकर भीष्म पितामह अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं कि देखो भगवान अपने ही भक्त का घोड़ा चला रहे हैं. तीसरा है, भगवान जब हमारे जीवन के रथ को चलाएंगे, हम सो नहीं सकते, हमको भी काम करना पड़ेगा। अर्जुन भी अपने हाथ में एक धनुष लेकर बाण लेकर लड़ाई करता है। इस तरह लॉर्ड एंड डिवोटी और को वर्कर्स इन दिस वर्ल्ड। को वर्कर का मतलब क्या है? आप इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाते हो, कब कंपनी के लोग नौकरी देते हैं आपको, आप परीक्षा देते हो और रिजल्ट वो कॉलेज नहीं तो बोर्ड देता है, आप बीज बोते हो और भगवान बारिश देते हैं। इस तरह भगवान हमको साथ देंगे, बुद्धि देंगे, लेकिन करना काम किसको है? हमको करना है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवान बताते हैं, तुमको कर्म करना तुम्हारा काम है और तुमको बुद्धि देना मेरा काम है। मेरे ऊपर निर्भर रहो, मैं बुद्धि दूंगा तुमको। तो इस तरह भगवान बताते हैं, सिर्फ उनके भक्तों को भगवान बुद्धि देते हैं, और जो भक्त नहीं बनते हैं उनके लिए भगवान छोड़ देते हैं, जिस दिशा में वो लोग जाना चाहते हैं जाने देते हैं। सब लोग दोहराइए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। देखिए भगवान बोल रहे हैं, दो चीज भक्तों को करना पड़ेगा और मैं एक चीज करूंगा। क्या है? आप लोगों को भजन करना पड़ेगा मेरा, और सदा मेरी सेवा में जो लगेगा भक्त, सेवा में लगता है भजन करता है उसको मैं बुद्धि देता हूं। इतना ही नहीं, तेषां सतत युक्तानां हमेशा मेरे सेवा में लगते हैं, भजतां प्रीति पूर्वकम। ऐसा ही नहीं कि नींद के साथ साथ भजन भी करते हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रीति पूर्वकम, प्रीति के साथ जो मेरी सेवा करता है, इस तरह सतत मेरे सेवा में लगता है, जो दो चीज करता है वो मेरा भक्त है। ये भक्त का परिभाषा है। और ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूं? मैं बुद्धि देता हूं, खुद ही सद्बुद्धि में दे देता हूं उनको, कैसे मेरे पास आने का, मैं बुद्धि देता हूं उनको। तो अपने भक्तों को भगवान बुद्धि देते हैं और बाकी लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं देते हैं, बुद्धि अपने भक्तों को देते हैं। जैसे कोई राजा भिक्मंगे को भी कुछ दान में देता है, लेकिन अपने लड़का जो होता है, राजा का युवराज होता है, उसको अच्छा कपड़ा देता है, अच्छा खाना देता है वो, क्योंकि खुद का बच्चा है वो। ऐसे इस तरह भगवान भी बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं उनको खुद ही संभालता हूँ, और जिधर भी मेरे भक्त साथ में आकर मेरे कथा करते हैं मैं उधर में मौजूद हूँ। इस तरह भगवान अपने बारे में बताते हैं, अपने भक्तों के बारे में बताते हैं ऐसे। तो गीता के अंत में भगवान ने अर्जुन को पूछा, कच्चिदेत श्रुतं पार्थ, हे पार्थ मैंने जो भी उपदेश दिया तुमको ध्यान से सुना क्या तुमने? नहीं तो बीच में कभी कभी मन भटक जाता है ना, इसलिए भगवान ने पूछा कि क्या तुमने ध्यान से सुना, तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा कि नहीं। एक बार सब विद्यार्थी बैठे थे क्लास में, एक मैथमेटिक्स टीचर थी, उन्होंने बोर्ड में कुछ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम लिख रही थी वो, तो मुड़कर देखा बच्चों के बीच में कुछ आवाज आ रहा था, तो टीचर ने पूछा सब लोग समझे कि नहीं? सब लोगों ने ऐसे ऐसे किया, हाँ समझ गए टीचर हमने। तो एक लड़का पीछे बैठा था, उनको लगा कि वो ध्यान से सुना नहीं, तो टीचर ने उसको संबोधित करते हुए बोला कि तुम उठो, उठ गया वो, तुम्हारे दिमाग में ये मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ये घुसा कि नहीं? वो बोला घुस गया मैडम। क्या घुस गया? वो बोला कि चिपकली जो बाहर था वो छिद्र के अंदर घुस गया। ऐसा बोल रहे, अरे उसके बारे में पूछा नहीं, ये सब्जेक्ट के बारे में पूछा। इस तरह टीचर ने जिस तरह बोला उसको, इस तरह भगवान ने भी पूछा अर्जुन को, अर्जुन मैं जो भी बोला तुम समझे कि नहीं? कश्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने एकाग्रता चित्त के साथ सुना क्या? ऐसे पूछ रहे हैं। कश्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, क्या तुम्हारे मोह नष्ट हो गया कि नहीं? तुम चुपचाप खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हो अभी मुझे शंका हो रहा है कि तुमने समझा कि नहीं। इस तरह भगवान अंत में पूछते हैं गीता के अंत में। तो तभी भी अर्जुन कुछ भी बोले बिना शांत रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, ठीक है तुमको अगर शायद मालूम नहीं है क्या करना चाहिए, मैं ही बोल देता हूं तुमको। इस तरह बोलकर ये श्लोक बोलते हैं, सब लोग पीछे दोहराइए, सर्वगोह्य तमं भूयः सर्व गुह्य, गुह्य मतलब है सीक्रेट, गुह्य तमम, देखिए गुह्य गुह्य तरह गुह्य तमम, सबसे परम रहस्य में तुमको बोलने वाला हूं अर्जुन। सर्व गुह्य तमम भूय श्रृणु में परमम वचः, मैं जो बोलूंगा तुमको परम रहस्य ध्यान से सुनो, बोला भगवान ने श्रृणु में सुनो परमम वचः, ये सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। इष्टोऽसि मे दृढमिति इदं वक्ष्यामि ते हितम्, तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, इष्टोऽसि मे दृढ़ भक्त हो मेरे, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं परम रहस्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखिए अगर हम लोग भी किसी को बोलना हो हम उसके ध्यान को आकर्षण करते हैं। अगर आपके घर में दूध वाला आता है, कोई थोड़े बच्चों को थोड़ा शांत करना, कोई माता थोड़े बच्चे को शांत करना। देखिए अगर कोई दूध वाला आता है आपके घर में, आप हर दिन एक पैकेट लेते हो आप, लेकिन आपके घर में कुछ मेहमान आ गए और आपको कल और चार पैकेट चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसको बोलते हो कल और चार पैकेट लेना ठीक है ना, तो हाँ बोलेगा, थोड़ा वो निकलने रहे निकलने वाला है, और एक बार आप बोलेंगे ए बोलना मत, आप बोलेंगे ना, और वो ठीक है माँ मैं बोलूंगा नहीं, तो जाने के पहले बोलेंगे पांच पैकेट याद रखो, इस तरह हम बोलते हैं। इस तरह से भगवान भी क्या बोल रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं परम वचन दे रहा हूं और परम रहस्य बोल रहा हूं और ध्यान से सुनो इत्यादि बोलकर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ये श्लोक बोल रहे हैं। सब लोग दोहराइए, मन मना भव मन भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ये एक श्लोक है, और एक श्लोक है गीता में नवा अध्याय में 34 श्लोक है, उधर भी भगवान यही बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। पहला लाइन सेम है, दूसरा लाइन अलग है, तो इससे क्या पता चलता है, भगवान की मन की बात हमें पता चल जाता है। दो बार एक ही श्लोक को क्यों बोला भगवान ने भगवद गीता में, एक अंत में बोला है, दूसरा है एकदम भगवद गीता के बीच में। देखिए भगवद गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय में 6 तीन मिला, पहले बीच वाला 6 अध्याय जो है उसमें से 9वें अध्याय के अंत में भगवान बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ गीता इस दिस श्लोक का, ये श्लोक है, मन मना हमेशा मेरे बारे में स्मरण करो, भव मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद्याजी मेरा पूजा करो, माम नमस्कुरु मेरा दंडवत प्रणाम करो। इसका मतलब इतना ही नहीं है कि दंडवत प्रणाम करना, लेकिन भगवान के विधि विधान दिए हुए विधि विधानों को जीवन में अपनाना उतारना, अगर तुम करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, ऐसे भगवान बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को पकड़ा इस्कॉन में, अमेरिका में जाकर प्रभुपाद ने सिखाया सब लोगों को, देखिए हमेशा भगवान का स्मरण करो मन मना। कैसे किया जाए भगवान का स्मरण, कोई बोल सकते हैं भगवान का स्मरण कैसे होगा? भगवान का स्मरण होगा नाम नियमित रूप से करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जपते 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 धीरे धीरे भगवान का स्मरण उठेगा धीरे धीरे। जैसे हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम करते हैं, करते करते करके उनके हृदय में सीता और राम आ गए। एक बार उन्होंने अपने हृदय को फाड़ कर दिखाया सीता राम को, उनके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। इस तरह भक्तों के हृदय में भगवान बस जाते हैं, कब हम उनके नाम नियमित रूप से रोज लेते रहते हैं, जीवन भर हम लेते रहते हैं, ये मन मना। और भव मद भक्तो मेरा भक्त बनो, इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद जी ने बोला कि हमें सब विष्णु व्रतों को करना चाहिए, जैसे मंदिर में आना, भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करना, चरणामृत लेना और सुगंधित फूल को सोंगना और भगवान की प्रदक्षिणा करना और भगवान के दिए हुए वाणी को पढ़ना, गीता भागवत को पढ़ना, भगवान के भक्तों के साथ संग करना और इस तरह भगवान की पूजा करना, आराधना करना, सर झुकना भगवान के सामने, उनको अपने जीवन में स्वामी मानना। और एक सुंदर श्लोक है, सब लोग बोलिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखिए बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो। क्यों? क्योंकि हमारे एक माता पिता है, लेकिन आप बापा न बाप हो, सब बापों के आप ही बाप हो, इसलिए आपका विठोबा बोलते हैं ना भगवान को, सब बापों के बाप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही मित्र हो, आप ही हमारे शिक्षा भी हो, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, ऐसे बताते हैं। और जो भक्त इस तरह जीवन बिताते हैं वो भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे भक्त हैं। अर्जुन भी ऐसे ही एक भक्त था। ऐसे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में एक कहानी आता है कि एक रात भगवान कृष्ण उठकर अपने टेंट को छोड़कर दूसरे टेंट की ओर चल रहे थे, तो उनको देखकर भीम भी पीछे पीछे गया। भीम के पीछे युधिष्ठिर भी गए, नकुल सहदेव भी गए। तो सब लोग ने देखा कि भगवान रातों रात किधर जा रहे हैं। तो भगवान जाकर अर्जुन के टेंट के अंदर चले गए। तो अर्जुन तो सो रहा था, तो भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन के शरीर में जो भी घाव थे भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श करके उस घाव को मिटा दिया एक क्षण में आसानी से। तो भीम युधिष्ठिर सब एक दूसरे को देख रहे थे, देखो भगवान की चमत्कार। और इतने में सब लोग, सब पांडव घुस गए टेंट के अंदर और भगवान के साथ कुछ बोलने लगे। भीम ने बोला भगवान को, शाबाश, आप कितना आसानी से सब घाव को निकाल दिया आपने। तो भगवान बोले, आवाज मत करो। तो भीम ने पूछा उनको, हे भगवान, आप इतने रात के समय आप क्यों आए हो इधर टेंट में इतने 12 बजे के समय? तो भगवान ने बोला, क्या भीम के कान को पकड़कर भगवान ने अर्जुन के पांव पर रखा, तो अर्जुन के रोम रोम से ऐसे नाम उठ रहे थे, कृष्ण 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 ऐसे उठ रहा था। तो भीम को आश्चर्य हुआ कि अरे, अर्जुन के हर रोम में कृष्ण का नाम निकल रहा है। तो देखा कि अर्जुन के सर के ऊपर भी, उनके पेट में भी, उनके पांव में भी, सब रोम रोम में कृष्ण का नाम उठ रहा था। तो कृष्ण ने बोला भीम को, देखो भीम, ये तो हर क्षण मेरा नाम ले रहा है, इसको मैं कैसे भूल पाऊंगा, इसलिए मैं आ गया इसको मिलने के लिए, ऐसे बोले भगवान। तो इस तरह से भगवान के भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं हर दिन। और ये भी बहुत आवश्यक है, हम घर में भगवान की फोटो हो, भगवान के शिव विग्रह हो, हर दिन उनको फूल चढ़ाना, हर दिन उनके सामने झुकना, उनको भोग चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो आजकल के जमाने में लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक अगरबत्ती जला देते हैं, तो भगवान के निकट आते ही नहीं। इस तरह भगवान बोलते हैं कि फल चढ़ाओ, क्यों? क्योंकि हर दिन मेरे पास तुमको आना पड़ेगा फल लेकर, फूल लेकर। तो हर दिन मेरे पास ताको आओगे तो तुम्हारे सर उठाकर मेरे चेहरे को देखो, और मैं कैसे मुरली बजा रहा हूँ, कैसे आनंद में हूँ, किसी भी टेंशन के बिना हूँ, और मुझे देख देख कर तुम्हारे अंदर भी आनंद का अनुभव होगा। धीरे धीरे तुम्हारे चित्त में जो मल है सब निकल जाएगा। तुम इस तरह नाम जपो, मेरी पूजा आराधना करो, भक्त बनो और नमस्कार करो। नमस्कार करने का मतलब है भगवान के सामने हमें सर झुकना चाहिए। जैसे अर्जुन जब गया भगवान के पास, वो पदकमलम के पास बैठा उसने, लेकिन दुर्योधन जब गया वो भगवान के सर के पास बैठा। तो जगते ही भगवान ने किसको देखा? पहले अर्जुन को देखा, बाद में दुर्योधन को देखा भगवान ने, क्योंकि दुर्योधन अहंकारी था, लेकिन अर्जुन भगवान के भक्त थे। इस तरह भगवान के भक्त जानते हैं कि हे भगवान, इस दुनिया में सब कुछ आपके कंट्रोल से चलता है। लंदन में प्रभुपाद जी ने एक घर को दिखाया भक्तों को। प्रभुपाद ने बोला देखो वो घर देखो ये घर देखो, दोनों में क्या फर्क है। एक घर में लाइट ऑन था, एकदम साफ सुथरा था घर, ऊपर से गिरने वाले पत्तों को एकदम क्लीन किया था उन्होंने। तो दूसरे घर में देखा भक्तों ने, उधर कुछ लाइट नहीं था, पत्ते सब उधर गिरे थे घर के सामने, घर भी बहुत गंदा था। तो भक्त लोगों ने बोला कि इस घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर चले गए हैं, और उस घर में कोई तो रहता है। तो प्रभा जी बोले अभी इस दुनिया को देखो, जिस तरह ये घर में लाइट लगा है, दुनिया में बड़ा लाइट लगा है, सुबह सुबह क्या लाइट, वो सूर्य का लाइट है, हा? रात को भी एक लाइट लगता है, क्या है, चंद्रमा जो नाइट लाइट है, हा? वो भी लगता है। अब सीजन टाइम पर आते हैं, सीजन टाइम पर जाते हैं, सूर्य का उदय होता है, अस्तमन होता है, सीजन बदलता है, पानी बरसता है, खाने पीने की सब व्यवस्था है। इसलिए इस घर में जरूर एक महान व्यक्ति इस घर को संभाल रहा है, हा? जिस तरह आप देखेंगे ये घर में पिताजी होते हैं जो लीडर होते हैं, वो पैसा लाकर सब घर वालों को पोषण करते हैं और घर वाले उनके बात मानकर चलते हैं। इस तरह से देश में देखिए एक प्रधानमंत्री है, सब लोग उनके कानून का पालन करते हैं और सब लोग कानून ना पालन करने वाले को दंड मिलता है कि नहीं। इस तरह से एक नेता से लोगों को पोषण मिलता है और सब लोग उस नेता के आदेश को पालन करते हैं। आपके शरीर में देखिए हाथ क्या करता है, लड्डू लेकर खुद नहीं खाता है, वो क्या करता है, पेट को देता है, उसके बाद उसको पोषण मिलता है। इस तरह भागवत में बताया गया है कि हम जब भगवान को पोषण देते हैं हमको भी पोषण मिलेगा, अगर हम खुद ही भोग करेंगे हम कभी पोषण नहीं मिल सकता है। तो इस तरह गीता में भगवान तत्व को बहुत अच्छी तरह समझाया अर्जुन को। अर्जुन ने अंत में बोला कृष्ण को, हे कृष्ण मैं आपको शरण जाता हूँ, करिष्ये वचनं तव, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा बस। तो गीता के अंत में हम लोग भगवान के पद कमलों में अपने आप को डालकर जब शरणागत होते हैं उसके बाद भागवतम शुरू होता है। सब लोग दोहराइए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे कम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, इस दुनिया में लोग छोटे मोटे धर्मों में फंसे हैं, लेकिन तुम परम धर्म को अपनाओ, जो मेरा शरणागति है, मेरा शरण में आ जाओ। लेकिन भागवत में शुरुआत में ही शरणागति की बात उठता है, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वो श्लोक में बोला गया है। सब कैतव धर्म को, कैतव धर्म का मतलब क्या है, भगवान के पास जाना, विविध चीजों को मांगना, लेकिन भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं करना, उसको कैतव धर्म बोलते हैं। इसलिए भगवान भागवत के शुरुआत में ही बोलते हैं। तो जो लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं भगवान के पास, वो प्रेम नहीं कर पाएंगे भगवान को। जैसे अगर आप भी अपने जीवन में देखिए, अगर कोई आकर आपकी प्रशंसा करता है, कोई व्यक्ति आपकी, तो चापलूसी करता है आपकी, 10 मिनट बाद पूछता है कि अरे मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, क्या 20,000 मिलेगा तुमसे, तो आप क्या बोलेंगे, अरे तुम इतने देर मेरी प्रशंसा किया तुमने पैसा मांगने के लिए, ठीक है लेके जाओ, दो महीने के बाद वापस लौटा दो। तो अगले बार आकर आपकी प्रशंसा करेगा कोई, आप तुरंत क्या सोचेंगे, अभी क्या मांगने के लिए आया है अभी। इस तरह दुनिया में सब लोग कुछ हेतु लेकर ही मैत्री जोड़ते हैं। कभी कभी कोई माता बोलते अपने बेटे को, बेटा तुम्हारे मामा MLA बन गया, थोड़ा संबंध रखो, जाकर मिलकर आओ। इस तरह लोग सोचते हैं कि संबंध रखना है कुछ हेतु के कारण। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जब कोई मेरे पास आता है प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, वो मेरा भक्त है। भागवत में ऐसे कहानी आता है, एक बूढ़ी स्त्री थी, वो अपने कंधे के ऊपर कुछ जंगल में काट कर लकड़ियां उठाकर लेके जा रही थी, लेकिन बार बहुत था, उठा नहीं पाई। सोचा कि नीचे फेंक दूंगी तो गिर जाएगा, उठा नहीं पाऊंगी, क्या किया जाए। तो एक राजा जा रहा था उधर रथ में। राजा ने पूछा, बड़ी स्त्री आपको क्या चाहिए, बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूं। वो बोले कि ए राजन, सही टाइम पर आप पहुंचा, तुम ये कंधे पर जो बोझ है उसको निकाल कर ये कंधे पर दे दो मुझे, क्योंकि दर्द हो रहा है इधर। तो राजा ने इधर से उठाकर इधर दिया उसको। और क्या चाहिए माता, बोलो। वो बोली, और कुछ नहीं चाहिए बेटा, चले जाओ। तो राजा चला गया। तो भागवत में ये कहानी बोला गया है, क्यों हम लोग भी इस दुनिया में क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, ये तकलीफ है मुझे, ये तकलीफ से मुझे सुलझा दो और हमारे जीवन को चलाने दो, चलने दो, और ये तकलीफ आएगा तो उसको सुलझाओ। तो ये किस तरह की बेवकूफी है, प्रभुपाद जी बताते हैं। एक मछुआरा था, मछली पकड़ता था वो नदी में, उसको वो एक प्रॉब्लम था, वो किनारे में बहुत कांटे थे, हर बार मछली पकड़ने के लिए जाता था, वो कांटे चुभता था इसके पांव में, दर्द बहुत होता था उसको। तो एक मित्र ने पूछा उसको, अरे भविष्य में तुम इस देश का राजा बन जाओगे तो तुम क्या करोगे। वो बोला, मैं राजा बन जाऊंगा ना, एक किनारे में पूरा तकिया डाल दूंगा ताकि ये कांटे पांव में चुभेंगे नहीं, तभी तकिया के ऊपर खड़े होकर मैं मछली पकड़ूंगा, ऐसे बोला। उसने बोला, अरे मूर्ख, तुम राजा बन गए तो मछली पकड़ने की क्या बात है, तुमको मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह भौतिक दुनिया में लोग अपने छोटी मोटी समस्याओं में फंसे हैं, लेकिन भागवत धर्म सिखाता है कि हम इस छोटे मोटे समस्याओं से ऊपर उठकर भगवान से मैत्री जोड़े, संबंध जोड़े, प्रेममय संबंध जोड़े। तो ये बूढ़ी स्त्री को क्या करना था, अगर वो राजा से बोलती थी, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन आप जैसे बेटे होता तो कितना अच्छा होता हमें, अगर ऐसे बोलती थी तो राजा जरूर उसको अपने माँ बना लेता था, माँ बना लेकर अपने ही राज्य में लेके जाकर उसको राजमाता बनाकर अच्छे सिल्क साड़ी कपड़े पहनाकर उसको सब आभूषण देकर अपने पास अच्छी तरह रखता था वो। इस तरह यशोदा ऐसे माता है जिन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उनको एक ही चीज चाहिए था, हे भगवान, आप मुझे बेटे के रूप में चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये भागवत में आता है, इस तरह का शुद्ध कृष्ण शिक्षा ये भागवत में प्राप्त होता है, किसी और आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगा, सिर्फ भागवत में प्राप्त होता है। तो ये जैसे आप लोग हैं इधर, आप लोग जरा सोचिए, घर वालों के साथ आप डीलिंग कैसे करते हैं और कंपनी में कैसे डीलिंग करते हैं, जरा सोच लीजिए। कंपनी में हम लोग बोलते हैं, थोड़ा नौकरी थोड़ा बोझ बढ़ गया तो तुरंत हम बोलते हैं, अगर और एक घंटा काम करना है तो हमको इंसेंटिव चाहिए और हमको पैसा चाहिए कंपनी से, वो हम उसको बोझ के रूप में मानते हैं। लेकिन घर वालों के पास जब आते हैं, जितना भी वो लोग हमारे सर के ऊपर समस्या दे तो हम स्वीकार लेते हैं उसको, क्योंकि प्रेम है, संबंध है। इस तरह जिस तरह आप घर वालों के साथ हम संबंध रखते हैं, एक जीव को भगवान के साथ भी इस तरह प्रेममय संबंध जोड़ना चाहिए। तो अभी समय हो गया है, हम भागवत से ज्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन भागवत के सब लीला इस विषय के ऊपर आधारित है कि भगवान और भक्त और इन दोनों के बीच में प्रेममय भक्ति, यही संबंध है। और इस संबंध को जो समझकर जानकर अपने जीवन में उतारता है, जैसे बड़े बड़े भक्त, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, सुमित्रा राधा रानी, गोपियां, गोपाल, गाय, बछड़े, किरण, मोर, वृंदावन में सबके सब भगवान के इस तरह प्रेमी भक्त है। तो हम आज के जन्माष्टमी के दिन अपने सर झुकाते हैं, सर जो इनके सामने ऐसे प्रेमी भक्तों के पद कमलों में, और हम याचना करते हैं कि जिस तरह से देवकी और वसुदेव ने अपने प्रेम के द्वारा भगवान को आज के दिन इस दुनिया में भगवान अवतरित हुए, जिनकी प्रेम से, और यशोदा और नंद बाबा जिनकी प्रेम से भगवान मथुरा छोड़कर गोकुल में जाकर विविध तरह की लीलाएं रचाया उन्होंने, ऐसे महान भक्तों की, गुरु परंपरा के सब महान आचार्यों की हम पदकमलों के आश्रय लेकर हम प्रार्थना करते हैं कि हम गीता भागवत पढ़कर भगवान को हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाए, हम अपने जीवन के केंद्र बिंदु बनाए, उनको बनाकर भगवान के शिक्षा और भगवान की लीला इन दोनों को सुनकर समझकर अपने जीवन में उतार कर दूसरों को भी बांट कर हम अपने चित्त में भगवान को बिठा कर नित्य निरंतर सदा उनकी स्मरण करते हुए जीवन हम जिए, ताकि हमारे अंतिम काल में अंते नारायण स्मृति जो भागवत में बताया गया है, अंतिम काल में हमें भगवान का स्मरण हो। जिस तरह अजामिल को अंतिम काल में भगवान का स्मरण हुआ, वैकुंठ प्राप्ति हुआ। ध्रुव महाराज को भगवान का स्मरण हुआ, वैकुंठ प्राप्ति हुआ। पृथु महाराज और अर्ची को वैकुंठ भगवान की स्मरण हुआ और वैकुंठ वो भी पहुंच गया ऐसे। इस तरह तुकाराम जी वैकुंठ पहुंचे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान को इस भौतिक दुनिया जो सबको बुलक्कड़ बनाता है, भगवान से बहिर्मुख बना देता है, भगवान से दूर लेके जाता है, और भगवान और हमारे बीच में एक बादल आ जाता है, एक आवरण आ जाता है, इस तरह की दुनिया से उठाकर अपने स्वधाम में भगवान ले ले और हमें उनके पदकमलों में आश्रित रखकर उनके पदकमल में सेवा दे। और हम श्रील प्रभुपाद जी के आज के दिन हम स्मरण करते हैं, उनकी कृपा से संस्था शुरू हुई है, अभी चल रही है, और हम कल मनाएंगे प्रभुपाद जी की आविर्भाव दिन। भगवान आज आए और कल प्रभुपाद जी आ गए, और इस भगवान की संबंध में उनकी गुणगान को सारे दुनिया को फैलाने के लिए श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण भगवान की और भक्त वृंद की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण।